मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, फिलहाल मैंने आप सबसे अनुमति ली है कि मुझे आप सब इस बात के लिए परमिशन दें कि मैं अपने जीवन से जुड़े कुछ प्रसंगों को आपके सामने रख सकूं, और उन प्रसंगों का संबंध इस अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व से ही है। कल मैंने इसके बारे में कुछ चर्चाएं आपसे की थी, तो आपने महसूस किया होगा कि जो मेरा अंतर्मुखी व्यक्तित्व, तथा कथित रूप से ही मैं कहूंगा कि जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व बना था, उसके पीछे मेरी अपनी परिस्थितियां थी। उन परिस्थितियों ने मुझे एक विशेष किस्म से सोचने के लिए बाध्य किया, और जब मैं सोचने लगा तो मुझे यह महसूस हुआ कि इसके सिवाय अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, कोई चारा नहीं है, कोई उपाय नहीं है कि मैं अपने अंदर ही उतरता चला जाऊं, या यूं कह लीजिए, ज्यादा अच्छा यही होगा कि अपने में ही सिमटता चला जाऊं, क्योंकि दूसरों से जाकर बात करने में, मिलने में मुझे डर लगता था। और उस डर के पीछे कहीं ना कहीं, सच पूछिए तो, यह भाव था कि कहीं वे मेरी उपेक्षा न कर दें, कहीं वे मुझे इग्नोर न करें या कुछ बोल ही न दें। ठीक है, चलिए, अगर वो इग्नोर कर देते, उपेक्षा कर देते, तो क्या मेरे अंदर उसे बर्दाश्त करने की ताकत नहीं होनी चाहिए थी? होनी चाहिए थी। इसका मतलब है कि उसी दौर में जब मेरे अंदर संकोच का यह भाव पल रहा था या अंतर्मुखी व्यक्तित्व आकार ले रहा था, ठीक उसी समय उसी के समानांतर मेरे अंदर एक ईगो भी था। क्योंकि देखिए, जब हम इस बात से डरने लगते हैं कि कहीं वह हमारी उपेक्षा न कर दे, तो डरते क्यों हैं? ठीक है, मिलना, बात करना आपका अधिकार है, और कोई आपका सम्मान करता है, आपको गले से लगाता है, प्यार करता है, या आपकी उपेक्षा करता है, आपको अपमानित करता है, यह उसका अधिकार है। आप अपने अधिकार के अंतर्गत रह करके अपना काम कीजिए, और जो सामने वाला है उसे उसके अधिकार के अंतर्गत रहकर काम करने की इजाजत दीजिए, गीता यही कहती है। लेकिन मैं डरता था, मतलब अपने अधिकार की तो मैं बात सोचता था, लेकिन दूसरे के अधिकारों की बात नहीं सोचता था। उन्हें इस बात की इजाजत मैं नहीं दे पाता था कि वो मुझे इग्नोर करें। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर उस समय अंतर्मुखी व्यक्तित्व का आकार लेने के साथ ही साथ ईगो भी अपनी उठान लेने लगा था। भले ही मैं उस बात को उस समय न पकड़ पाया हूं, न समझ पाया हूं, लेकिन ऐसा था। कल्पना करके देखे कि यदि उस समय ऐसा नहीं रहा होता, मेरे अंदर वो साहस आ जाता कि नहीं, कोई बात नहीं, उपेक्षा करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, सह लेंगे, और सच्चाई भी तो है, तब शायद मेरा व्यक्तित्व एक अलग तरीके का निर्मित होता। मैं आपको यहां एक बहुत ही छोटी सी घटना सुनाना चाहूंगा जो मैंने बाकायदे एक इंटरव्यू में सुनी, और हो सकता है कि इससे पहले मैंने कभी इसकी चर्चा भी की हो। ऋतिक रोशन जी को आप जानते हैं, है ना, एक्टर हैं। उनके पिता राकेश रोशन बहुत बड़े एक्टर भी रहे, और वो तो फिर म्यूजिशियन भी रहे, और बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं फिल्म जगत के। तो एक बार ऋतिक रोशन अपने परिवार के साथ, जिनमें उनके पिता माता साथ में थे, तो बकायदे वे साईं बाबा के दर्शन करने के लिए गए। ठीक है, साईं बाबा के दर्शन करने के लिए लाइन लगी हुई थी, तो ये भी लाइन में खड़े रहे। इसके बाद पीछे से आवाज आई, ऋतिक रोशन जी ने ही बताया है, शब्द कुछ दूसरे हो सकते हैं, आवाज आई कि ये टकलू, ये टकलू, ये टकलू। ऋतिक रोशन ने जब ये बात सुनी तो उनका खून उबलने लगा। उसका कारण यह था कि जो राकेश रोशन है, जो ऋतिक रोशन जी के जो पिता हैं, उनके सिर पर बाल नहीं है, तो शायद जो कहने वाला व्यक्ति था वो उन्हीं को संबोधित कर रहा था और चिढ़ाने के अंदाज में कह रहा था, ये टकलू, ये टकलू, ये टकलू। तो ऋतिक रोशन ने अपने इंटरव्यू में बताया कि मैं बिल्कुल अंदर से उबलने लगा, मेरे अंदर ऐसी खलबलाहट हुई कि मैं इस लाइन को तोड़ करके जाऊं पीछे और उसकी गर्दन पकड़ लूं और उसकी अच्छी पिटाई करूं, ठोकाई करूं, कि यह क्या तरीका होता है। लेकिन तुरंत ही फिर मैंने एक बात सोची, और वो ये कि क्या जो मेरे पिता हैं वो गंजे नहीं है, वो टकलू नहीं है? और अगर ऐसा है तो कोई उन्हें यही कह रहा है तो वो क्या गलत कह रहा है? तो ऋतिक रोशन ने बताया कि जैसे ही मेरे मन में यह विचार आया, ठीक है, उसके कहने का अंदाज थोड़ा सा अपमानित करने वाला हो सकता है, उकसाने वाला हो सकता है, लेकिन बात तो सच थी। तो जैसे ही मेरे मन में यह विचार आया, मेरा जो उबाल है, जो मेरा उफान था, वो धीरे 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 शांत होने लगा, और थोड़ी देर में बिल्कुल शांत हो गया, बात खत्म हो गई, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। इसके उलट सोच करके देखे कि अगर ऋतिक रोशन ने उस समय वहां हंगामा खड़ा किया होता तो क्या स्थिति बनती, दृश्य बिल्कुल अलग होता। और ऐसा नहीं है कि इससे इनको कोई बड़ा लाभ हो जाता, मतलब अंदर जो एक उबाल थे, जो एक ईगो था, हो सकता है कि वो ईगो थोड़ी देर के लिए संतुष्ट हो जाता है, लेकिन बाद में पछतावा तो होता ही, क्योंकि वो अखबारों की सुर्खियों में होता कि ऐसा ऐसा उन लोगों ने किया। और जब ये होता कि ऋतिक रोशन ने ऐसे मारपीट की, तो पढ़ने वाले आपको क्या लगता है कि उनके समर्थन में खड़े होते? नहीं, बोलते कि यार ये क्या है, छोड़ देते, क्या हो गया, वो तो मंदिर में पूजा ही करने तो आए थे ना, आप भी तो क्या यही पूजा होती, पता नहीं क्या क्या बातें होने लगती। तो आप देखिए कि कैसे एक सत्य को स्वीकार करने के कारण उससे संबंधित जो विचार उत्पन्न हुआ, यह दुर्घटना खत्म हो गई। मुझे लगता है कि यदि मैंने भी उस समय इस बात को स्वीकार कर लिया होता कि अगर लोग मेरी उपेक्षा करते हैं, इग्नोर कर रहे हैं, मुझे अपमानित भी कर देते हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? अगर कोई मुझे कहता है कि अरे तू तो ऐसा ही है, तो मैं वैसा ही था, अरे तेरे को क्या आता है, तो मुझे सच में क्या आता था, अरे तू तो बहुत गरीब है, तो ठीक है मैं गरीब था, लेकिन इसे मेरा मन स्वीकार नहीं कर पा रहा था, तभी तो इससे अपमानित होने के भाव को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। तो दोस्तों, इसकी वजह से मैं अपने में सिकुड़ने लगा, सिमटने लगा, अपने ही अंदर उतरने लगा। ये मैं बहुत गहरी बात आप सबसे कह रहा हूं दोस्तों, और अपनी जीवन की सच्चाई को खोलकर उधेड़ कर आपके सामने रख रहा हूं, ताकि मैंने जो कुछ भी महसूस किया, सही या गलत, उन्हें आप जान सकें और अपने लिए कोई सही रास्ता तलाश कर सकें। वहां मैं गलत था, यह बात मैं जरूर आप सबके सामने स्वीकार करना चाहूंगा। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। नमस्कार।